पाठ 28, तीसरे दूत के समाचार। जैसे ही यीशु की सेवकाई पवित्र मंदिर का पहला भाग में समाप्त हुई, तो यीशु दूसरा भाग यानी महापवित्र स्थान में प्रवेश कर ईश्वर की आज्ञा जिस संदूक में रखी गई थी ठीक उसके सामने खड़ा हुआ। इसी प्रकार ईश्वर ने पृथ्वी पर तीसरा दूत को समाचार देने भेजा। उसने स्वर्गदूत के हाथ में कागज रख दिया। वो बड़ी महिमा और शक्ति के साथ पृथ्वी पर उतर आया और बहुत ही डरावना संवाद दिया जो मनुष्य ने कभी नहीं सुना था। यह संवाद तो ईश्वर के लोगों की रक्षा करने संबंधी था। परीक्षा की घड़ी और क्रोध का समय उनके सामने है, उसकी चेतावनी थी। स्वर्गदूत ने फिर आगे कहा कि वे पशु और उसकी मूरत की पूजा करें। इसके बीच में उन्हें घोर संघर्ष या युद्ध करना पड़ेगा। अनंत जीवन पाने का एकमात्र जरिया उनके लिए यही होगा कि वे अपने विश्वास में स्थिर रहें। यद्यपि उनके जीवन के लिए खतरा है, फिर भी उन्हें सच्चाई पर स्थिर रहना होगा। इन वचनों से तीसरा दूत ने अपना संवाद अंत किया। संतों का धीरज इसी में है जो ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। प्रकाशित वाक्य 14:12। इन शब्दों का उच्चारण कर उसने स्वर्गीय महापवित्र स्थान की ओर संकेत किया। जिन्होंने इस संवाद को ग्रहण किया, उनके मनों को महापवित्र स्थान की ओर संकेत किया, जहां यीशु दया का सिंहासन के सामने खड़ा था। वहां वह उन लोगों की विचवाई कर रहा है जिनके पाप क्षमा नहीं हुए हैं और जिन्होंने आज्ञाओं को तोड़ा है। प्रायश्चित का यह काम मरे और जीवित दोनों प्रकार के धार्मिक लोगों के लिए कर रहा है। यीशु उनके लिए भी प्रायश्चित का काम कर रहा है जो उसकी आज्ञा पाए बिना मरे यानी अनजान से मर गए हैं। जब यीशु ने महापवित्र स्थान का दरवाजा खोला तो सत्य की सच्चाई का प्रकाश दिखाई दी। इसके द्वारा ईश्वर के लोगों की जांच होगी। ईश्वर ने प्राचीन काल में इस्राएलियों के बच्चों को इसके द्वारा परखा। मैंने तीसरा दूत को देखा जो निराश हो गए थे। उन्हें स्वर्ग का महापवित्र स्थान की ओर इशारा कर दिखा रहा था। उन्होंने विश्वास से यीशु को महापवित्र स्थान में सेवकाई का कार्य करते हुए देखा। यीशु को देखकर उनके मन में आनंद और आशा की नई किरणें उगाईं। मैंने उन्हें बीती हुई घटनाओं को दोहराते हुए देखा। वे यीशु मसीह का दूसरा आगमन से लेकर 1844 ईस्वी तक जो सुसमाचार सुना रहे थे उसका अवलोकन कर रहे थे। उनके निराश होने का कारण को विस्तार से समझाया गया। इसके बाद उनका आनंद को नवीकरण किया गया, यानी उनका आनंद लौट आया। तीसरा दूत ने उनका बिता हुआ अनुभव में रोशनी डाली, भविष्य की बात को खोल दिया। इस तरह से वे जान गए कि ईश्वर अद्भुत रीति से उनकी अगुवाई की। मुझे दिखाया गया कि शेष विश्वासी लोगों ने यीशु को महापवित्र स्थान में संदूक के सामने और दया का सिंहासन के पास खड़ा देखा। वे उसकी बड़ाई कर रहे थे। यीशु ने वहां संदूक खोला तो देखा कि 10 आज्ञाओं की 2 पट्टियां रखी हुई थीं। उन्होंने वहां एक ताज्जुबी चीज देखी। 4थी आज्ञा के ऊपर और दूसरी 9 आज्ञाओं से अधिक रोशनी पड़ रही थी। सारी आज्ञाओं के चारों ओर महिमा की रोशनी पड़ रिप्रेजेंट पर 4थी आज्ञा पर सबसे ज्यादा थी। उन्होंने वहां ऐसा कुछ भी संकेत नहीं पाया कि 4थी आज्ञा उठा दी गई या उसे 7वां से पहला दिन में बदली कर दी गई है। बादलों के गर्जन और बिजली की चमक के बीच ईश्वर का महान, अद्भुत और डरावना हाथों के द्वारा ये 10 आज्ञाएं 2 पट्टियों पर लिखी गई थीं और मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दी गई थी। उसमें जो लिखी गई बातों को हम इस प्रकार पढ़ते हैं, 6 दिनों तक तू परिश्रम कर सब प्रकार के कामों को करना, लेकिन 7वां दिन मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे प्रभु परमेश्वर का सप्त दिन है। 10 आज्ञाओं को वहां बहुत ही हिफाजत से रखी गई थी। उसे देखकर लोग आश्चर्य करने लगे। उन्होंने उसे ईश्वर के पास सुरक्षित पूर्वक रखी हुई देखी। वह ईश्वर की पवित्र छाया से ढांकी हुई थी। उन्होंने देखा कि पट्टियों की 4थी आज्ञा को लोग रौंद रहे थे, यानी यहोवा का दिया हुआ 7वां दिन का सप्त को न मानकर हिंदुओं और पोप के लोगों के द्वारा घोषित किया हुआ सप्त यानी सप्ताह का पहला दिन को मान रहे थे। वे ईश्वर के सामने नम्रता से झुककर सप्त तोड़ने के कारण विलाप करने लगे।
यीशु ने जब इनका पश्चाताप की प्रार्थना पिता के पास पहुंचाया
तो वहां धूप धुआं जलाने का बर्तन से धुआं निकलने लगा। मैंने उसे देखा। जब धुआं हट रहा था तो यीशु की दया का संदूक के ऊपर और प्रार्थना करने वालों के ऊपर एक तेज ज्योति उतरती हुई दिखाई दी। ये प्रार्थना करने वाले इसलिए दुखित थे कि उन्होंने ईश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया था, पर अब उनके पाप क्षमा हुए, वे आशीष के भागी हुए। तब उनके चेहरों में आनंद की रोशनी दिखाई देने लगी थी। उन्होंने तीसरा दूत के साथ मिलकर गंभीर चेतावनी का संवाद दिया। प्रारंभ में तो कुछ ही लोगों ने ग्रहण किया, परंतु वे हताश न होकर जी जान से प्रचार करते रहे। इसके बाद मैंने देखा कि बहुत लोग इसमें शामिल होकर एक साथ तीसरा दूत का संवाद सब जगह प्रचार करने लगे। उन्होंने ईश्वर को पहला स्थान देकर उसका पवित्र किया हुआ शब्द को मानने लगे। बहुत लोगों ने तीसरा दूत का संवाद को तो अपनाया, पर पहले दो दूतों के संवाद का कुछ भी अनुभव नहीं था। शैतान इसे जानता था और उसने उन्हें भटकाने की कोशिश की, परंतु तीसरा दूत इन्हें स्वर्ग का महापवित्र स्थान की सेवकाई को दिखा रहा था, और वे लोग भी जिन्हें पहले अनुभव हो चुका था इसी ओर इशारा कर रहे थे। बहुतों ने इन दूतों के समाचार में सिलसिलेवार देखा और आनंद से सत्य को ग्रहण करने लगे। उन्होंने इन संवादों को सिलसिलेवार रूप से अपनाकर स्वर्गीय पवित्र स्थान में यीशु की सेवकाई को ग्रहण किया। ये समाचार जहाज का लंगर के समान हमारे लिए भी है, बोलकर दिखाया गया। अब लोग इसे ग्रहण कर लेते हैं तो समझ जाते हैं और शैतान की भरमाहट परीक्षा से भी अपने को बचा लेते हैं। सन 1844 ईस्वी की भयानक निराशा के बाद शैतान और उसके दूत मसीहियों का विश्वास को डगमगाने के लिए बहुत कोशिश करने लगे। जिन लोगों ने अपने जीवन में इनकी अभिज्ञता प्राप्त की थी, उनके मनों को फुसलाने बहकाने का काम कर रहे थे। वे अपने को नम्र बनाकर दिखा रहे थे। पहले और दूसरे दूतों के समाचार को बदलकर इसे भविष्य में पूरा होने की चर्चा कर रहे थे। फिर दूसरे लोग इसको बहुत दिन पहले बीती हुई घटना बता रहे थे। ये एजेंट लोग अनुभव से गुजरे हुए लोगों के मन को डामाडोल कर उनके विश्वास को डगमगा रहे थे। कुछ लोग तो बाइबल को ढूंढ ढांढ कर अपना विश्वास को स्थिर करने में लग हुए थे और खुद खड़े रहना चाहते थे। इसमें शैतान बहुत खुश था। वह जानता था कि लोग सत्य का लंगर को छोड़ चुके हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार की त्रुटियों कमियों को दिखाकर उन्हें सिद्धांतों की हवा में उड़ा कर ले चलें। जो लोग पहला और दूसरा दूतों का संवाद को ग्रहण कर उसके अनुसार चल रहे थे, वे शैतान की इस चालाकी से दूर रहे। पर जिन्हें अनुभव नहीं था, वे शैतान के भ्रम रूपी जाल में फंस गए। इस प्रकार इस मसीही झुंड में दो दल हो गए। मैंने विलियम मिल्लर को अपने लोगों की इस दशा पर उदास निराश होकर सिर झुकाए बैठा देखा। मैंने देखा कि जो दल 1844 ईस्वी में एक दूसरे से प्रेम कर एकता के बंधन में थे, वे अपना प्रेम को छोड़कर एक दूसरे के विरुद्ध बातें करने में लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि वे नीचे अंधकार में गिर गए, शोक के कारण अपनी शक्ति खो चुके थे। तब मुझे यह दिखाया गया कि उस समय के अगुवे क्या विलियम मिल्लर को तीसरे दूत का समाचार पर स्थिर देखकर ईश्वर की आज्ञाओं को मानते देख रहे हैं या नहीं। उन लोगों ने देखा कि वह स्वर्ग की ज्योति की ओर झुक रहा है, तो वे उसका मन को भटकाने लगे। मैंने देखा कि मनुष्य का प्रभाव उसको अंधकार में रखने की चेष्टा कर रहा था। वे उसे अपने साथ रखना चाहते थे, पर विलियम मिल्लर की जीवनी, जिसे जेम्स व्हाइट ने लिखी, यह कहता है, मैं आशा करता हूं कि मैंने अपना वस्त्र यीशु के लोहू से धो डाला है। जहां तक मैं महसूस करता हूं कि मैंने अपनी लियाकत या क्षमता से लोगों का दोषारोपण से अपने को मुक्त कर लिया है। ईश्वर से इस व्यक्ति ने कहा, यद्यपि मैं दो बार निराशा से घिरा हुआ था, फिर भी मैं अब तक संपूर्ण रूप से निराश नहीं हुआ था और न फेंका हुआ के समान अपने को समझा। यीशु के आगमन में मेरी आशा शुरू से ही स्थिर है, कभी नहीं डगमगाया है। मैंने बहुत वर्षों के गंभीर सोच विचार से ही इसे स्थिर रखा है। मैंने ऐसा कर अपनी गंभीरता समझी। यदि मुझसे कुछ गलती हुई भी है तो वो अपने भाइयों को प्रेम करने में और ईश्वर के प्रति अपनी कर्तव्य निभाने में। एक बात मैं जानता हूं कि जिस पर मैंने विश्वास की सा उसी का प्रचार भी किया। ईश्वर भी मेरे साथ था, उसकी शक्ति प्रचार के काम में थी और इससे अच्छाई के लिए बहुत प्रभाव डाला गया। इस प्रचार के दौरान बहुत से लोगों को बाइबल का अध्ययन करने के लिए प्रेरणा दी गई। उसके जरिए विश्वास से और यीशु के लोहू के छिड़काए जाने के कारण ईश्वर के साथ समझौता हुई। मैं घमंडियों के मजाक का पक्ष नहीं करता था और जब दुनिया हमारे विरुद्ध उठी तो उससे भी नहीं डरा। मैं ना उनके पक्ष में हूंगा और ना मैं अपना कर्तव्य से भी नहीं भागूंगा और उन्हें चिढ़ाने का अवसर न दूंगा। मैं अपने जीवन को उनके हाथ में कभी न डालूंगा और न झुकूंगा इसको खोने के डर से। मैं आशा करता हूं कि ईश्वर अपना अच्छा प्रबंध से ऐसा ही करे। जेम्स व्हाइट, विलियम मिलर की जीवनी, पृष्ठ 315। आधारित वचन, निर्गमन 20 आयत 8 से 11, मत्ती 5 आयत 18, 24 आयत 20, प्रकाशित वाक्य 14 आयत 9।